नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, टर्निंग द फ्लाईव्हील। जिम कॉलिंस की प्रसिद्ध पुस्तक गुड टू ग्रेट के साथ पढ़ी जाने वाली एक संक्षिप्त प्रबंधन मोनोग्राफ है। इसका विषय किसी कंपनी की तेज प्रगति का जादुई सूत्र नहीं, बल्कि लगातार किए गए परस्पर जुड़े कामों से बनने वाला संगठनात्मक संवेग है। कॉलिंस फ्लाईव्हील को एक भारी चक्र के रूपक के रूप में रखते हैं, जिसे शुरू में धकेलना कठिन होता है, पर हर सही धक्का अगले धक्के को अधिक प्रभावी बनाता है। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को अमेज़न जैसे किसी दूसरे संगठन की नकल कराना नहीं है। इसके बजाय यह अपनी संस्था के विशिष्ट ग्राहकों, गतिविधियों, क्षमताओं और परिणामों के बीच मौजूद कारणात्मक श्रृंखला पहचानने की विधि देती है। यह पुस्तक व्यवसाय, स्टार्टअप, सामाजिक संस्थाओं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है। कॉलिंस का तर्क है कि स्थायी प्रगति किसी एक बड़े अभियान, करिश्माई नेता या अचानक हुए बदलाव से कम और अनुशासित ढंग से अपने फ्लाईव्हील को घुमाते रहने से अधिक आती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले फ्लाईव्हील प्रभाव। छोटे धक्कों से बनता हुआ असाधारण संवेग। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि महान प्रदर्शन अक्सर बाहर से अचानक सफलता जैसा दिखता है, जबकि भीतर वह लंबे समय तक किए गए संगत प्रयासों का परिणाम होता है। कॉलिंस भारी फ्लाईव्हील का रूपक इस्तेमाल करते हैं। आरंभ में उसे थोड़ा भी घुमाने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, इसलिए शुरुआती सुधारों के परिणाम सीमित दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जब संगठन एक ही तर्क के अनुसार लगातार काम करता है, तो हर चक्र अगले चक्र की गति बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में ग्राहक अनुभव बेहतर हो सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, मांग आ सकती है, संसाधन मजबूत हो सकते हैं और फिर सेवा या उत्पाद और सुधर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गतिविधियां अलग अलग उपलब्धियां नहीं है, वे एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाली श्रृंखला है। इसलिए फ्लाईव्हील केवल कड़ी मेहनत का दूसरा नाम नहीं है। इसमें सही गतिविधियों का सही क्रम, उनके बीच स्पष्ट कारण संबंध और उन्हें समय के साथ दोहराने का अनुशासन शामिल है। यह दृष्टि उन नेताओं को चुनौती देती है जो एक निर्णायक घोषणा, नई तकनीक या बड़े पुनर्गठन को प्रगति का मुख्य स्रोत मानते हैं। पुस्तक के अनुसार वास्तविक ब्रेकथ्रू अंत में दिखता है, पर उसकी तैयारी अनेक छोटे, दिखाई न देने वाले धक्कों में होती है। दूसरा, अपना विशिष्ट फ्लाईव्हील बनाना। नकल नहीं, बल्कि कारणों की कठोर जांच। कॉलिंस के लिए फ्लाईव्हील का सबसे उपयोगी रूप वह है जो संगठन की अपनी वास्तविकता से निकले। अमेज़न का उदाहरण प्रेरक है, लेकिन पुस्तक बार बार संकेत देती है कि किसी दूसरे उद्यम के चरणों को कॉपी करना पर्याप्त नहीं होगा। पाठक को यह स्पष्ट करना होता है कि उसकी संस्था किसे मूल्य देती है, उस मूल्य से कौन सा सकारात्मक परिणाम पैदा होता है और वह परिणाम आगे किस क्षमता को मजबूत करता है। इन घटकों को एक वृत्ताकार अनुक्रम में रखना जरूरी है, क्योंकि फ्लाईव्हील की शक्ति वापसी वाले प्रभाव में है। यदि क्रम बदल दें या कोई कड़ी केवल आकर्षक नारा हो, तो मॉडल काम नहीं करेगा। पुस्तक सीमित और स्पष्ट घटकों पर जोर देती है, ताकि लोग उन्हें समझ सके, माप सके और रोजमर्रा के निर्णयों में इस्तेमाल कर सके। कॉलिंस का हेजहॉग कॉन्सेप्ट यहाँ एक जांच का साधन बनता है। यह पूछने में मदद करता है कि प्रस्तावित गतिविधि संगठन की गहरी क्षमता, आर्थिक या संसाधन चालक और उसके मूल उद्देश्य से वास्तव में जुड़ी है या नहीं। इस तरह फ्लाईव्हील बनाना रणनीति की सूची तैयार करना नहीं है, यह उन कारणों की परीक्षा है जिनसे संस्था का बेहतर काम भविष्य में और बेहतर काम करने की क्षमता पैदा करता है। तीसरा, अमेज़न का उदाहरण, ग्राहक मूल्य और लागत संरचना का परस्पर सुदृढ़ चक्र। पुस्तक अमेज़न के फ्लाईव्हील को एक पहचाने जाने योग्य उदाहरण के रूप में रखती है, क्योंकि इसमें ग्राहक के लिए बेहतर प्रस्ताव और व्यवसाय की परिचालन क्षमता एक दूसरे को मजबूत करते हैं। व्यापक चयन, सुविधाजनक अनुभव और प्रतिस्पर्धी मूल्य ग्राहक आकर्षण बढ़ा सकते हैं। अधिक ग्राहक और अधिक गतिविधि विक्रेताओं या भागीदारों के लिए मंच को उपयोगी बनाती है। इससे चयन और उपलब्धता बढ़ सकती है, जबकि बड़े पैमाने से लागत दक्षता के अवसर बनते हैं। वे अवसर ग्राहकों को मिलने वाले मूल्य को फिर मजबूत कर सकते हैं। इस उदाहरण का महत्व किसी एक कंपनी की प्रशंसा में नहीं, बल्कि इस तर्क को देखने में है कि रणनीतिक घटक कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ग्राहक केंद्रितता तभी फ्लाईव्हील का हिस्सा बनती है जब वह ठोस परिचालन परिणामों से जुड़ी हो। केवल ग्राहक को प्राथमिकता देने की घोषणा पर्याप्त नहीं है। संगठन को यह दिखाना चाहिए कि बेहतर अनुभव किस तरह मांग, पैमाना, संसाधन या साझेदारी बढ़ाएगा और वे लाभ फिर ग्राहक के पास कैसे लौटेंगे। कॉलिंस का उपयोगी संदेश यह भी है कि फ्लाईव्हील को स्थिर चित्र नहीं समझना चाहिए। बाजार बदलने पर संस्था को अपनी मूल तर्क श्रृंखला बचाते हुए उसके घटकों को बेहतर करना पड़ता है। इसलिए उदाहरण सीखने का ढांचा है, तैयार खाका नहीं। चौथा, डूम लूप का जोखिम। जब संस्थाएं संवेग के बजाय तात्कालिक बचाव खोजती हैं, टर्निंग द फ्लाईव्हील अपने सकारात्मक मॉडल को उसके विपरीत व्यवहार से भी स्पष्ट करती है, जिसे कॉलिंस डूम लूप कहते हैं। यह स्थिति तब बनती है जब कोई संस्था अपने प्रदर्शन के मूल कारण नहीं समझती और दबाव आते ही बार बार दिशा बदलती है। तब वह किसी करिश्माई उद्धारक, अपरीक्षित रणनीति, अचानक अधिग्रहण, व्यापक पुनर्गठन या तथाकथित परिवर्तनकारी पहल में मुक्ति खोज सकती है। इनमें से कोई कदम अपने आप में हमेशा गलत नहीं है। समस्या तब है जब उन्हें एक स्पष्ट, प्रमाणित संचालन तर्क के बिना लगातार बदलते समाधान की तरह अपनाया जाता है। ऐसी अस्थिरता कर्मचारियों, ग्राहकों और भागीदारों को यह समझने नहीं देती कि संस्था किस बात में लगातार बेहतर बनना चाहती है। संसाधन नए अभियानों में बंटते हैं, सीख अधूरी रहती है और पहले से बने संवेग को बार बार रोका जाता है। कॉलिंस इस विचार को अपनी कॉरपोरेट पतन संबंधी सोच से जोड़ते हैं, विशेषकर उस अवस्था से जहां संगठन घबराकर उद्धार की तलाश करता है। व्यावहारिक अर्थ में फ्लाईव्हील एक निर्णय कसौटी देता है। नेता पूछ सकते हैं कि नया प्रस्ताव हमारे स्थापित चक्र की किसी कड़ी को मजबूत करता है या केवल ध्यान भटकाता है। यह प्रश्न बदलाव को रोकने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव को रणनीतिक अनुक्रम से जोड़ने के लिए है। अंत में, तुरंत परिणामों के बजाय मापनीय अनुशासन और बदलते बाजार में निरंतर अनुकूलन। पुस्तक की व्यावहारिक चुनौती यह है कि फ्लाईव्हील को दीवार पर बने चित्र तक सीमित न रहने दिया जाए। प्रत्येक घटक के लिए संगठन को समझना होगा कि उसे बेहतर बनाने वाला व्यवहार क्या है और कौन से संकेत बताते हैं कि वह वास्तव में सुधर रहा है। उदाहरण के लिए, ग्राहक अनुभव, दोबारा उपयोग, उपलब्धता, लागत दक्षता, गुणवत्ता या साझेदार भागीदारी जैसे संकेत संस्था के संदर्भ के अनुसार उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन मापन का उद्देश्य केवल अधिक आंकड़े इकट्ठा करना नहीं है, उसका उद्देश्य यह देखना है कि एक कड़ी की प्रगति अगली कड़ी को अपेक्षित रूप से मजबूत कर रही है या नहीं। यह सोच अल्पकालिक प्रदर्शन दबाव के बीच धैर्य मांगती है, क्योंकि कुछ निवेशों का पूरा प्रभाव धीरे दिखाई देता है। साथ ही कॉलिंस फ्लाईव्हील को जड़ता का बहाना नहीं बनाते। बदलते बाजार या उथल पुथल में संगठन को अपनी गतिविधियों, संसाधनों और कार्यान्वयन में बदलाव करना पड़ सकता है। अंतर यह है कि अनुकूलन का केंद्र एक संगत तर्क रहता है, न कि हर परिस्थिति में नई पहचान अपनाना। छोटे उद्यमों से लेकर गैर लाभकारी संस्थाओं तक यह ढांचा खास तौर पर उपयोगी है, क्योंकि यह नेताओं को प्राथमिकताएं चुनने में मदद देता है। वे उन कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो पूरे चक्र को गति देते हैं, न कि केवल अलग थलग दिखने वाले लाभ देते हैं। निष्कर्ष में, टर्निंग द फ्लाईव्हील उन संस्थापक, मुख्य कार्यकारी, प्रबंधक और टीम नेताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपनी वृद्धि को केवल लक्ष्यों, अभियानों या प्रेरक नारों के माध्यम से नहीं समझना चाहते। गुड टू ग्रेट से परिचित पाठकों को यह उसके एक प्रमुख विचार का अधिक अनुप्रयोग केंद्रित विस्तार देगा। नए पाठकों के लिए भी इसकी संक्षिप्तता लाभकारी है, बशर्ते वे इसे पूर्ण व्यवसाय रणनीति की पाठ्य पुस्तक के बजाय एक केंद्रित सोचने के उपकरण के रूप में पढ़ें। पाठक इससे अपनी संस्था की गतिविधियों को कारण और परिणाम की श्रृंखला में देखने, प्राथमिकताओं को छांटने तथा आकर्षक मगर असंबद्ध पहलों से सावधान रहने का व्यावहारिक लाभ पा सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा और छोटे उद्यमों के नेता भी इसके ढांचे को अपने संदर्भ में ढाल सकते हैं, क्योंकि पुस्तक किसी एक उद्योग के नियम नहीं देती। समान प्रबंधन पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान, इसकी सीमित महत्वाकांक्षा और स्पष्ट केंद्र है। यह नेतृत्व के अनेक गुणों, बाजार विश्लेषण की हर तकनीक या विस्तृत वित्तीय योजना पर चर्चा नहीं करती। इसके बजाय यह एक प्रश्न को गंभीरता से विकसित करती है कि कौन सी परस्पर मजबूत होने वाली गतिविधियां हमारी संस्था को टिकाऊ संवेग देंगी। अमेज़न, वैनगार्ड और क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे उदाहरण इस विचार को ठोस बनाते हैं, पर पुस्तक का अधिक मूल्य पाठक को अपनी विशिष्ट तर्क श्रृंखला बनाने के लिए बाध्य करने में है। जो लोग त्वरित नुस्खा चाहते हैं, उन्हें यह सीमित लग सकती है। जो लोग निरंतर सुधार के पीछे मौजूद संरचना समझना चाहते हैं, उनके लिए यह उपयोगी और अनुशासित मार्गदर्शिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जिम कॉलिंस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।